ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रुझान आना शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी 23 सीट पर आगे है, वहीं पीडीपी 2 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, निर्दलीय 9 सीट पर आगे हैं। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 10 मतगणना केंद्र कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपिया, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। हरियाणा में अब तक प्राप्त रुझानों के अनुसार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर आगे है। इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, निर्दलीय 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, वहीं अम्बाला छावनी से पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज कांग्रेस उम्मीदवार परविंदर पाल पाली से पीछे चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट पर आगे चल रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह से पीछे चल रहे हैं। इलेनाबाद सीट पर INLD के अभय सिंह चौटाला बढ़त बनाए हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य अधिनियम को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना है। इससे विवाद और कानूनी मामले कम होंगे तथा करदाताओं को अधिक निश्चितता मिलेगी। मंत्रालय ने सभी पक्षकारों, विशेषज्ञों और आम जनता से आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर सुझाव मांगे हैं। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ई फाइलिंग पोर्टल पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्षय रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की घोषणा की है। देश से क्षय रोग के उन्मूलन पर बल देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी टीबी रोगियों के लिए उपचार के दौरान मासिक पोषण सहायता 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ, बृहत मुंबई नगर निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से स्थापित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग पूरी करेगा। इससे पहले अगले वर्ष 1 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद आज ताजमहल का दौरा करेंगे। आगरा मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि श्री मोइज़ू की यात्रा के दौरान ताजमहल आम जनता के लिए 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। मालदीव के राष्ट्रपति का गुरुवार को माले लौटने से पहले आज मुंबई और कल बेंगलुरु का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के बारे में प्रशिक्षकों के लिए 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से करेंगे। ये कार्यक्रम आज से जबलपुर में शुरू होगा। इसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों, विशेष रूप से जिला स्तरीय समितियों, सब डिवीजन स्तरीय समितियों और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के सदस्यों को इन अधिनियमों के बारे में प्रशिक्षित करना है। कार्यशाला में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लगभग 150 प्रशिक्षक भाग लेंगे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। कल शारजा में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 60 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 124 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने 7 विकेट और 4 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से फिनलैंड में शुरू हो रही है। 6 दिन की यह प्रतियोगिता 13 अक्टूबर को संपन्न होगी। इसमें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के 12 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।